श्रोताओं को नमस्कार। साझा मंच मोबाइल वाणी रिपोर्टर नंद किशोर आज उपस्थित हैं दिल्ली देहात गांव कापासड़ा में। आज हमारे साथ IYRC संस्था के संचालक सूरजकांत जी हैं। आइए हम आज सूरजकांत जी से इस गांव से संबंधित पहलू पर विचार करेंगे। जो बाहर से आए हुए मजदूर साथी इन गांव में पलायन करते हैं और इन मजदूरों को यहां आने के बाद किन किन परिस्थितियों से गुजरना होता है, आज इन्हीं सब चीज़ों पर खास बात में हम चर्चा में उपस्थित कराए हैं सूरजकांत जी को। तो सूरजकांत जी ये बताएंगे कि यहां पर जो बाहर से आए हुए मजदूर साथी होते हैं उनको किन किन तरह का समस्याओं से गुजरना होता है और क्या यहां पर इस तरह की जो जीवन बिता रहे हैं लोग उनका क्या अनुभव है आपके साथ, तो इसके साथ आप शेयर करें।
नमस्कार, मेरा नाम सूरजकांत है और मैं कापासड़ा गांव से बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मजदूर पलायन करके आते हैं तो उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चाहे वो उनके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनके काम से रिलेटेड हो। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसमें भी उनको बचा के बहुत कुछ करना होता है। तो ये उनके रियलिस्टिक मुद्दे हैं जिस पे मजदूर संघर्ष लगातार करता है। अब आप सोचिए कि जब मजदूर की इनकम ही 8,000, 10,000, 12,000 पर मंथ होगी तो उसका हेल्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका खाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो लोवेस्ट ही होगा। और जब कम वो मजदूर अपना पैसा बचाने की कोशिश करता है तो वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाता, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अच्छा, एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पर जो रेंटल के तौर पर ये मजदूर साथी रहते हैं, तो ये जो रेंट पर रहते हैं तो इनको क्या क्या दिक्कतें की परेशानी उठाना पड़ता है, जैसा कि मजदूर साथी लोग बताते हैं।
जैसे कोई भी यहाँ पे मजदूर साथी रेंट पे रहता है तो उसको किराया देना पड़ता है, उसको पानी बिल देना पड़ता है, उसको बिजली बिल देना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभ नहीं मिलते हैं। कई बार अगर वो उसका काम छूट जाए या समय पे पैसा नहीं मिले तो उसके ऊपर एक कर्ज का बोझ आता रहता है। ऐसी समस्याएं हैं जो उनके साथ कंटिन्यू रहती है।
अच्छा, तो जहाँ वो मकानों वगैरह में रहते हैं तो उनको क्या कुछ तरह की सुविधाएं तो है नहीं, और अगर वहाँ रहते हैं मकानों में तो क्या उनको उस मकान में रहने में भी संघर्ष करना होता है, पानी के बिल की सरचार्ज, सफाई का सरचार्ज, या जो राशन खाते हैं उधार हो या नगद हो उसकी सरचार्ज में क्या दबाव उनके ऊपर होता है कि मतलब आप हमारे बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो उस पर भी कोई तरह के।
देखिए, पहले के टाइम पे दबाव बिल्कुल था कि जहां पे आप रहते हैं वहीं से आपको राशन खाना है, बट कुछ सालों से इसमें बदलाव आया है। अब आप सिर्फ 2 या 3% हम मान के चले कि अभी भी ऐसा है, लेकिन अब वो दबाव खत्म हो गया है। क्योंकि पहले का टाइम की हम बात कर रहे हैं तो पहले लोग कम थे, काम कम था, बिल्डिंगें कम थी, रिसोर्सेस कम थे, जिससे ये पैटर्न फॉलो होता था। लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पे आए, काम बढ़ा, बिल्डिंगें नई नई बनी, उनके लिए रिसोर्सेज बढ़े, मजदूर पलायन करके आए, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला, तब से ये चीजें कम होती गई। तो अब ऐसा आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा जिसमें आपको जहां आप रहते हैं आप वहीं पे खाना खाइए या राशन लीजिए, तो अब ये धीरे धीरे कम हो गया।
आखिर इसमें क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन की जो वेबसाइट पर सारी चीजें उपलब्ध है उसको लेकर, या मार्केट में तरह तरह की दुकानें खुल गई है हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसको लेकर इसके कंपटीशन के लेकर।
देखिए, जितने अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो अभी भी एक अनुमानित 4 लाख से 5 लाख लोग हैं। अब आप सोचिए कि इस एरिया में 5 लाख लोगों के लिए कितनी राशन की दुकानें हैं, कितने रिसोर्सेज है। तो मजदूरों को जहां अच्छा लगता है वो वहां पे जाके खाता है, चाहे उसको 2 रुपए सस्ता मिले चाहे 2 रुपए कम मिले। हाँ, अगर हम उनकी बात करें जो राशन उधार लेके दुकानों से खाते हैं और महीने पूरे होने पे पैसा देते हैं, उनके लिए जरूर इशू जाए, क्योंकि उनको महंगा सामान लेना पड़ता है, दुकानदार अपनी मर्जी से रेट लगाता है, वो महीने के एंड में उसको पैसा देते हैं। कोविड के टाइम पे तो और समस्या बढ़ गई, क्योंकि कोविड के टाइम पे ना दुकानदारों के पास पैसा था ना मजदूरों के पास पैसा था, तो दुकानदार ने सामान लाना अपना कम कर दिया तो मजदूर को उधार देना भी बंद कर दिया। तो ऐसे इश्यूज तो कंटिन्यू होते ही।
जी धन्यवाद। तो अभी आपने सुना श्रोताओं, अगर आपके आसपास क्षेत्र में भी कोई सूचना संदेश है तो आप भी बताइए अपने फोन में नंबर 3 दबाकर, साथ ही रोजाना सुनने के लिए केवल मिस कॉल दे। धन्यवाद।